राधा बेटा कृपा कटाक्ष से होगा। बहुत ही गंभीर और गुण रस से युक्त है, अशेष हाव भाव धीर ही हार भूषित उज्जवल इन मनी जो पढ़ेगा समझेगा तो इसका अर्थ समझेगा या ये सभी का ऐसे नहीं। हाव किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, हेला किसको कहते हैं, किलकिंचित किसको कहते हैं, ये सब इसमें भरा पड़ा है। जो भजन साधन परायण है ये सबका पाठ करके बहुत ही आनंदित होंगे। और इसके लिए फिर देखो कैसा सुंदर ये बनाया है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजादिपे शिरादिके। अलंकार भी है, भाव भी बहुत गंभीर है। जितने भी लोग वर देने वाले हैं सबको भी वर देने वाली है। यहाँ तक कि राधा कुंड के तट पर कृष्ण उनकी आराधना करते हैं तो ये वर देती हैं, इसलिए वरदेश्वरी भी हैं। कहते हैं इसके लिए जो लोग पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों पक्ष की एकादशी को और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का प्रतिपूर्वक पाठ करेगा तो जो उसकी भावना करेगा, जो भावना करेगा वही होगा, सब कुछ को देने वाला है। जंग जंग कामयते कामम तं तं प्राप्नोति साधकः, जो जो कोई कामना करेगा सबको प्राप्त करेगा। इफ एनी वन ऑन पूर्णिमा एकादशी अष्टमी एनी वन विल रिमेम्बर दिस श्लोक एंड डू कीर्तन इन द वाटर ऑफ राधा कुंड लाइक दिस देन व्हाट ही विल वांट एवरीथिंग इज ऑल विशेस विल बी ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। और इस सूत्र से राधा कृष्ण युगल का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मैंने इन इन आंखों से ही भगवान का राधा कृष्ण का दर्शन होगा। गोवर्धन के समीप राधा कुंड के जल में जंघा तक अथवा नाभि पर्यंत जल में या कंठ तक खड़े होकर के स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार कुछ दिनों तक पाठ पूर्ण करने से मनोवांछित समस्त कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति माधुर्य की भी। दर्शनार्थी भक्त को इन्हीं नेत्रों से साक्षात राधा जी का दर्शन हो जाता है। राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वर देती हैं। इसे तत्काल श्याम सुंदर प्रकट होकर के नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इसे पढ़ करके वैष्णव के लिए कोई भी बस देव भवन तक तो हो गया है, सर हो गया है। राधे जय जय सही प्रथा।
Thank you.
हरिदास। जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार चरण संसार गेलाम भूले अगमन चाटन नाचले चरण मन संसार गेलाम भूले थरे प्रेम मय बारी तारे तारे देखिले नयन हय चेतन ब्रजेंद्रनंदन भजे जेयन
Bye.
वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, भागवत में, गोस्वामी ग्रंथों में कृष्ण भजन करने से ही जीवन सफल होगा ऐसा माना जाता है, ऐसा सिद्ध है। जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते उनका जीवन विफल है। उसके लिए ये लोचन दास कह रहे हैं, एमन माधव ना भजे मानो कौन मरिया जाते, वो कब मर जाएगा, जन्म लिया है मरेगा तो कीट और पैखाने के कीट के समान मरेगा, रव रवे कृमि देखावे, जम तो प्रहार करेगा और कृमि उनको खाएंगे, कीड़े काट करके खाएंगे, तार पर आर पापी नहीं आर, संसार जगत से माझे कौनो कालकार गति नहीं यार, मिठाई प्रभुशिलाई। ऐसे लोगों का मुख कहते हैं ये तार मुख नहीं देखी, उनका मुख हम दर्शन नहीं करना चाहते जो भगवान का, वो तो मरेंगे ही, कीड़े ये सब खाएंगे हैं। जो लोग बस जीवन में ऐसे ही बिता देते हैं, वैष्णव में भी वैष्णव नाम धारण कर वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उनमें विश्वास नहीं करते हैं, उनकी ना जाने क्या गति होगी। इसलिए सब छोड़ छाड़ करके भाई और बहनों और बेटियों भजन करो, कभी भी दूसरे की निंदा मत करो, कभी नहीं, अपना देखो दुर्गुण, और नहीं तो तुम्हीं को भोगना पड़ेगा। खूब याद रखो अच्छी तरह से, यदि हरि गुरु भजन करने आए, हरि गुरु वैष्णव लोग प्रसन्न ही नहीं हुए तो जीवन के लिए ये लोचन दास कहते हैं उसका मुख नहीं देखना चाहते हैं और वो जीवन एकदम बेकार का है। समाल मत तुम थर भी तो इतना सुंदर वैष्णव संघ ऐसा रस बरस रहा और इसमें जिसकी रुचि नहीं वो कैसा है। ऐसे वैष्णव संघ को प्रधानता नहीं देते, उनके जीवन को कोटि कोटि बार धिक्कार है। मैंने आज क्या देखा है? ये जो कीर्तन कर रहे हैं हे सखी आश्चर्य में फर करके और पूछे सखी आज मैं यमुना के किनारे मैंने उपन में मैंने क्या देखा, उसी का वर्णन कर रहे हैं। बोलो
करे लीला रसना। उसको देख करके फिर मैं लौट नहीं सकी। अब मैं नहीं लौटूंगी,
घर में। अब तो सास ससुर सबकी लज्जा को छोड़कर, लोक लज्जा सब छोड़ करके पति इत्यादि की, अब तो मैं वन में ही रह करके उस लीला का दर्शन करूंगी और ध्यान करूंगी, अब मैं घर नहीं लौटूंगी। कितना सुंदर भाव ये सब। इसलिए इन सबको कीर्तनों को भावों को ग्रहण करके भजन करो और इनकी भावना करो। इसमें एक ऐसा रस है जो उसमें डूब जाने से संसार अपने आप दूर हो जाएगा, उसके कष्ट भी दूर हो जाएंगे, कोई अब पर चर्चा की बात ही नहीं रहेगी। ऐसा लगाओ मन को जो मन इधर उधर न जाए, जैसा ये कह रहे हैं विनोद कोई है भक्ति विनोद ठाकुर के अतिरिक्त ऐसा कौन लिख सकता है। हमने कहा विनोद कौन, गुरु जी का नाम याद आ गया विनोद। तो अब तो 8:15 बज रहा है, थोड़ा हमको भी विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा नहीं कर रही जो उठूं, इच्छा कर रही है जैसे यही सब करते 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 शाम और रात बीत जाए। यद्यपि बाहर के लोग आते हैं कीर्तन करते हैं बड़े सुंदर, किंतु इसमें जो रस भरा पड़ा है उन सब के कीर्तनों में वो सब रस नहीं भरा पड़ा, तभी उनको उत्साह देने के लिए बुलाते हैं। आज जन्माष्टमी है, आज आधी रात में वृंदावन में, ब्रज में भी और मथुरा में भी स्वयं भगवान आविर्भूत होते हैं। उनके अवतार के बहुत से कारण हैं, बहुत एक दो नहीं हजारों कारण हैं, किंतु कुछ शास्त्रों में निर्णय किए गए हैं, किंतु वही तक उनका कारण निहित नहीं है। जैसे कहा गया है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सीयम्। धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन धर्म की? लोक धर्म। लोक धर्म तो भी हो जाता है मूल, ये सनातन
नित्य धर्म।
नित्य धर्म क्या? नित्य धर्म यही जो कीर्तन हम लोगों ने किया, असुरों का दलन कर या प्रेममय जो है कृष्ण की लीला इत्यादि विलास, इसकी प्रतिष्ठा करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए। यदि कृष्ण अपनी परिकरों के साथ में जगत में नहीं आविर्भूत होते तो उनकी इन लीलाओं का गायन व्यास और सुख ये सब कैसे करते, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अनुग्रह करके आते हैं, इसलिए इन लीलाओं को करेंगे। उस समय के लोग जो देखेंगे, उस समय के लोग देखेंगे और पीछे उसका श्रवण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अनायासी भवसागर को पार कर जाएंगे, इसका वर्णन करेंगे। विक्रीडितम ब्रजमधुभिः दंच विष्णो अनुसृणुयात् अथ वर्णयेत् यः भक्तिं पराम् प्रतिलभ्य कामं हृद रोगमाशु अपि हिनोत्यते। इन लीलाओं का यदि कोई अनुसृणुयात् गुरुमुख से श्रवण करे और फिर उसको अपने छंदों में, अपनी भाषा में या दूसरों की भाषा में इसका वर्णन करे, तो कृष्ण की प्रेममयी भक्ति, काममयी भक्ति आएगी और हृदय का कामरूप सदा के लिए हो जाएगा। एक आदमी का मन बहुत चंचल था, सब समय काम में उसकी चिंता रहती थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी जी से पूछा मैं क्या करूं, हमको सब समय काम आता है, तो कृष्ण की रासलीला पढ़ो। सब लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली है इनकी लीला। इनका यदि अनुश्रेणिया काम रोग भी सब कुछ दूर हो जाएगा सदा के लिए। जो नहीं सुनेगा उसके लिए कहते हैं सुनिया विधिलिंग,
सुनना चाहिए,
ऐसा होना चाहिए। और उसके राष्ट्रपश्चात है कि अंत में उन्होंने कहा ना इन लीलाओं का श्रवण करें। तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, सौभाग्य का काम में लाओ। दिन रात इसका चिंतन पठन पाठन ये सब करो और जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण ने आज मथुरा में आंशिक रूप से जन्म ग्रहण किया और पूर्ण रूप से ब्रज में गोकुल में जसोदा जी के गर्भ से पूर्ण रूप में। किंतु श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से इसी का वर्णन किया मथुरा और प्रच्छन्न रूप से वर्णन किया गोकुल का, क्योंकि प्रच्छन्न बाद रसमय होता है परोक्ष बाद ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक बार मैंने कहा था कभी और फिर स्मरण आ गया, कहता हूँ बतला रहा हूँ। मुझको कई शास्त्र में तो हमने पढ़ा नहीं है किंतु मैं अपने मन से अनुमान करता हूँ, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी बड़े रसिक थे, उन्होंने विचार किया कि जगत के लोग प्राय मूढ़ होते हैं, बहुत कम चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। यदि गोकुल में कृष्ण का जन्म मान लिया जाए ऊपर से, तो कृष्ण तत्व और अपराकृत ब्रज तत्व तो समझते लोग नहीं, वो कहेंगे पीछे से तो ये कृष्ण जो ब्रज में जन्मे तो उन्हीं की भाभी उन्हीं की बहन उन्हीं की ये सब कृष्ण के साथ में राज किया, उनके साथ में परकीय भाव किया, तो कृष्ण की निंदा करेंगे। इसलिए इस विषय को प्रच्छन्न रख करके मथुरा में जन्म लिए उनका मान लिया जो इस भाव का कृष्ण हुए जदवंशी और उत्तर ब्रज के तो ब्रज की हैं, तो इसलिए कृष्ण वहां गए तो उनसे प्रेम हुआ था, ये कोई खराब बात इस विषय को चिंता करके आया समझ में, बहुत पूर्ण बात है। इसलिए शास्त्रों में नहीं लिखा किंतु मैं समझता हूँ कि और इसीलिए ऐसा किया। ब्रज में यदि माननीय तो राधा जी उनकी क्या लगेगी, बहन बहन ये सब या भौजाई लगेगी, भौजाई क्या
कहते हैं,
मामी कहते हैं मामी और क्या क्या संबंध वो लग जाएगा, तब फिर प्रेम कैसे होगा, इसलिए रसाभास हो जाएगा और वो लोग समझेंगे नहीं ये राधा और गोपियां कृष्ण ही हैं। कृष्ण है उनकी अंश कला, अंश कला मैंने क्या 64 कलाओं में से एक एक कलाएं हैं, ये सब कृष्ण ही हैं, नहीं समझेंगे वो लोग, वृंदावन से इसी रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं, नहीं समझेंगे इन सब कारणों से। आज ही प्रकट होकर के फिर किस प्रकार से पूतना का वध किया, किस प्रकार से तृणावर्षक सासुर इत्यादि का वध किया, इसमें कितनी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, धेनुकासुर का वध किया और गिरिराज गोवर्धन को उठाया, क्यों उठाया, इंद्र पर बहादुरी करने के लिए नहीं, इंद्र को शासन करने के लिए नहीं, मतलब ये तो ऊपर की बात है, बाहर की बात है।